नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन 384 केंद्रों पर हुआ था। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल हो रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी कल 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अब लाहौल स्पीति के गांवों में विश्वास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से सटे गांव तेजी से बदल रहे हैं। स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गांवों में नई उम्मीद देना है, ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस कर सकें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। यहां सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग दुर्गम गांवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ रहे हैं। वहीं 5G टावर लगने से अब दूर दराज इलाकों में भी डिजिटल क्रांति पहुंच रही है। पर्यटन विभाग स्थानीय युवाओं को होमस्टे और टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। काला जीरा, केसर और सेवक थॉन जैसे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान दिलाने के लिए आधुनिक मशीनें और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गाँव में नई उम्मीद जगाना है, ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से यह आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। ये परियोजना इस वर्ष जुलाई से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज शिमला में कल बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सूचना प्रौद्योगिकी के युग में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों व युवा अधिवक्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे अधिवक्ताओं की आवश्यकता होगी जो इन संवेदनशील व जटिल मुद्दों को प्रभावी रूप से समझ सके। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 400 से अधिक शोधार्थियों, प्राध्यापकों, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने भाग लिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। किन्नौर जिला की प्राकृतिक विरासत, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आज समापन होगा। ये आयोजन 8 मई से हिमाचल पर्यटन विभाग, ओम किन्नौर स्थानीय शाखा, वन विभाग और जिला प्रशासन किन्नौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गौली क्षेत्र में आयोजित इस फेस्टिवल में स्थानीय लोगों, पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी विशेषज्ञों, फोटोग्राफरों, कलाकारों और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फेस्टिवल के पहले दिन संगीत प्रस्तुतियां, पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण कार्यशालाएं, कविता पाठ, फोटो प्रदर्शनी, फन गेम्स, फूड स्टॉल, स्मृति चिन्ह स्टॉल और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही पारंपरिक उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला। आज फेस्टिवल के अंतिम दिन पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण, विशेषज्ञ संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ है, हालांकि प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है और लोगों को सुबह व शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, रिकॉर्ड गुम होने पर भू स्वामी का हक खत्म नहीं हो जाता, अदालत ने कहा प्रशासनिक चूक की सजा नागरिकों को नहीं दे सकते, लैंड बहाली मामले में पुनर्विचार का आदेश। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, 31 मई तक तबादलों की फाइल न भेजें, शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी टालने का आग्रह। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, राज्य में कल से फिर झमाझम 12 व 13 को भारी बारिश के आसार, ओलावृष्टि तूफान का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।